लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, महामारी कोविड-19 से पूरे विश्व की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था चरमरा सी गई है। महामारी से वैश्विक शांति और सुरक्षा पर भी गहरा असर पड़ा है और दुनिया अनेक मोर्चों पर संकट का सामना कर रही है। आज लोगों की जिंदगियां बचाना और भविष्य के लिए सुरक्षा के स्तंभों को मजबूती से खड़ा करना असल चुनौती है। इस साल के अंत तक 13 करोड़ से ज्यादा लोगों के भुखमरी के कागार में पहुंचने की आशंका है। 1 अरब से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नियमित टीकाकरण सेवाओं से अभूतपूर्व व्यवधान आया है, जिससे खसरा और पोलियो जैसे बीमारियों के व्यापक स्तर पर फैलने का खतरा पैदा हो गया है। बहुत से देश आतंकवादी खतरों और जोखिमों का सामना कर रहे हैं। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वैश्विक महामारी ने आतंकवाद के उभरते नए रूपों जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल, साइबर हमलों और जैविक आतंकवाद के खतरे के प्रति भी सचेत किया है। वायरस की तरह आतंकवाद भी राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करता। यह सभी राष्ट्रों को प्रभावित करता है और इसे सामूहिक रूप से ही हराया जा सकता है। आतंकवाद का कारगर ढंग से मुकाबला करने के लिए बहुपक्षवाद की ताकत के जरिए व्यवहारिक समाधानों की तलाश की जानी होगी। महामारी से मानव अधिकारों के लिए पहले से ही मौजूद चुनौतियां और ज्यादा गहरी हुई हैं। लॉकडाउन, कर्फ्यू और अन्य पाबंदियों के लिए उठाए गए उपायों में पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग देखा गया। सर्वसत्तावाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मीडिया, नागरिक समाज व अभिव्यक्ति की आजादी सीमित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सचेत किया है कि अगर विश्व में महामारी कोविड-19 के खिलाफ असरदार कार्रवाई नहीं की गई, तो फिर इससे उपजने वाली मंदी अनेक वर्षों तक अर्थव्यवस्था में व्यवधान बनाए रखेगी। इसका मुकाबला सभी देशों को एकजुट होकर करना होगा। कोविड-19 से संबंधित कुछ खबरों का सार आइए सुनते हैं सचिन गौड़ से।
5 संभावित वैक्सीन रिसर्च के दूसरे चरण में है, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की जा रही एक अन्य वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में पहुंच गई है। जिनेवा में एक पत्रकार वार्ता के दौरान मेडिकल ऑफिसर एना मारिया हेनाओ रेस्ट्रेपो ने बताया, किसी तयशुदा सीमा में हमें वैक्सीन का मिलना या ना मिल पाना अनेक बातों पर निर्भर करता है, जिनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अच्छी बात यह है कि आपसी सहमति और सहयोग से बहुत काम हो रहा है। अभी तक 150 से ज्यादा वैक्सीनों पर काम चल रहा है और हर दिन एक नई उम्मीद बनती है। मेडिकल ऑफिसर एना मारिया हेनाओ रेस्ट्रेपो के शब्द। इस बीच दुनिया के मौजूदा हालात और कोविड-19 की बात की दुनिया में पुनर्बहाली के रास्ते पर भी विचार विमर्श चल रहा है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने महिला अर्थशास्त्रियों के साथ हाल ही में एक बातचीत में निकट भविष्य की एक निराशाजनक तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि चरम गरीबी और भुखमरी में व्यापक बढ़ोतरी होने की आशंका है। विकासशील देशों में सार्वजनिक खर्च की मांग एक ऐसे समय में बढ़ रही है जब टैक्स, निर्यात, धन प्रेषण से प्राप्त होने वाले राजस्व में गिरावट दर्ज की जा रही है। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि उनका प्रयास इस संकट से उबरने के लिए वित्तीय संसाधनों का इंतजाम करना और पुनर्बहाली के लिए रास्ता तैयार करना है। 50 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष और सरकारें आगे बढ़कर एक ऐसे साझा प्रयास का नेतृत्व कर रहे हैं ताकि वैश्विक नकदी, कर्ज अदायगी की चुनौतियों, गैर कानूनी वित्तीय लेन देन जैसी समस्याओं से निपटा जा सके।
विश्व जनसंख्या स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA 2020 की एक प्रमुख रिपोर्ट में बाल विवाह, लिंग पक्षपाती, सेक्स चयन, लड़का लड़की में भेद करके लड़कों को प्राथमिकता देना और महिलाओं एवं लड़कियों को नुकसान पहुंचाने वाली अन्य प्रथाओं को रोकने के लिए त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मंगलवार 30 जून को एक जारी रिपोर्ट में कहा कि हर साल लाखों लड़कियों को ऐसी प्रथाओं का सामना करना पड़ता है जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचता है। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए यूएन संवाददाता अंजू शर्मा ने भारत के यूएनएफपीए की लैंगिक मुद्दों की राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिकारी शोभना गोयल से बातचीत की।
UNFPA की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की गई है, क्या सार है इस रिपोर्ट का, किन प्रमुख बातों पर प्रकाश डाला गया है इसमें?
रिपोर्ट में 19 कुप्रथाओं की पहचान की गई है, जैसे कि दहेज से जुड़ी हिंसा या फिर वो अपराध जो हम ऑनर के नाम पे सुनते हैं कि की जाती है और आमतौर पे जिन्हें ऑनर किलिंग कहा जाता है। कुल मिला के रिपोर्ट में उन सभी कुप्रथाओं पे गौर किया गया है जिनसे मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। खास तौर पे रिपोर्ट 3 प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करती है जो व्यापक और निरंतर है। वो है बाल विवाह, जेंडर आधारित लिंग चयन जो बेटों को ज्यादा महत्व देने से जुड़ी हुई है, और फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन जिसे हम हिंदी में महिला खतना कहते हैं।
जैसे कि आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट में विशेष रूप से इन 3 कुप्रथाओं को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया गया है, इस बारे में भारत के आंकड़े क्या कहते हैं और इससे निपटने में अब तक क्या प्रगति हुई है?
3 कुप्रथाओं को जिनका वर्णन मैंने किया है उनमें से बाल विवाह और जेंडर भेदभाव आधारित लिंग चयन भारत में व्यापक रूप से प्रचलित है। महिला खतना भारत में एक सीमित रूप से कुछ प्रांतों में प्रचलित है। पिछले एक दशक में विश्व स्तर पर और भारत में बाल विवाह की व्यापकता में काफी गिरावट देखी गई है, और अगर हम नेशनल डेटा को देखें जो कि रिपोर्ट में भी कोट की गई है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उनके आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 27% लड़कियां 18 साल की उम्र से पहले शादी करती हैं। एक दशक पहले यही दर 47% पर थी। भारत की प्रगति ने पूरे दक्षिण एशिया के बाल विवाह के दर में 50% की गिरावट में योगदान दिया है। तो फिर हम देखते हैं कि बाल विवाह में काफी हद तक भारत में गिरावट देखी गई है। दूसरी जो कुप्रथा की बात की गई है इस रिपोर्ट में वो है जेंडर भेदभाव आधारित लिंग चयन। सर, भारत में हर 1000 लड़कों पे 899 लड़कियां पैदा हो रही हैं।
सोशल मीडिया में नफरत भरे भाषणों और संदेशों में तेजी आई है। गलत सूचनाओं व जानकारी की महामारी भी फैल रही है। संयुक्त राष्ट्र ने तमाम लोगों से आग्रह किया है कि उन्होंने कोविड-19 महामारी से बचने के लिए जो सामाजिक दूरी जैसे उपाय अपनाए हैं, उसी तरह के उपाय सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी अपनाएं और कोई भी सामग्री आगे बढ़ाने यानी शेयर करने से पहले ठहर कर उसके बारे में सावधानी से सोचें। संयुक्त राष्ट्र की सूचना अभियान वेरीफाइड इनिशिएटिव की तरफ से ये नया संदेश है जिसमें दुनिया भर के लोगों से कहा गया है कि वो भावनात्मक रूप से भड़काऊ या गंभीर सामग्री को सोशल मीडिया में शेयर करने से पहले गहराई से सोचे। श्रोताओं, विश्व स्वास्थ्य संघ के अनुसार महामारी कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या पूरे विश्व में शुक्रवार 10 जून तक 1,23,96,793 हो गई और अब तक 5,57,541 लोगों की मौत हुई है। भारत की बात करें तो भारत में अब तक 7,95,605 मामलों की पुष्टि हुई है और 21,632 लोगों की मौत हुई। साथ ही 4,96,048 लोग कोरोना बीमारी से ठीक भी हुए हैं। इस महामारी से हम अपने आप को बचाते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। विश्वव्यापी कोरोना महामारी पर आज की चर्चा संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो से ली गई थी और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने विश्व के कैथोलिक धर्मानुयायियों से आग्रह किया है कि वे अपने मन के द्वारों को खुला रख अपने विश्वास को जिएं, ताकि विश्वास का संचार लोगों तक एक अनमोल खजाना पहुंचाने के लिए हो। गुरुवार 9 जुलाई को एक ट्वीट संदेश प्रकाशित कर संत पापा फ्रांसिस ने कहा, विश्वास या तो मिशनरी है अथवा वह कोई विश्वास नहीं है। विश्वास हमें खुद से बाहर निकलकर अन्यों की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। विश्वास का संचार और प्रचार होना चाहिए, विश्वास दिलाने के लिए नहीं, बल्कि एक अनमोल खजाने की पेशकश के लिए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु खुले द्वारों सहित अपने विश्वास को जीने में हमारी मदद करें, एक पारदर्शी विश्वास को जीने में हमारी सहायता करें। जिनीवा में शरणार्थियों के पुनर्वास पर संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में इस सप्ताह आयोजित एक बैठक में परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक और वेटिकन के वरिष्ठ महाधर्माध्यक्ष आइवन यूरकोविट्स ने शरणार्थियों के जीवन और उनकी प्रतिष्ठा के सम्मान का आग्रह किया। पुनर्वास और पूरक रास्ते शीर्षक से शरणार्थी संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्त UNHCR द्वारा प्रकाशित दस्तावेज पुनर्वास और पूरक मार्गों को और अधिक समान बोझ और जिम्मेदारी साझा करने हेतु मूर्त तंत्र के रूप में पहचानता है। महाधर्माध्यक्ष यूरकोविट्स ने बैठक में शामिल राष्ट्र के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए तीसरे देश समाधान को सघन करने की शरणार्थी संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्त के प्रयासों को स्वीकार किया तथा प्रथम ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम 2019 के संदर्भ में इस रणनीति को हासिल करने हेतु किए गए वादों का भी स्वागत किया। इस संदर्भ में महाधर्माध्यक्ष ने संत पापा फ्रांसिस की उत्कंठाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए कहा कि उनकी आशा है कि अधिकाधिक देश निज और सामुदायिक प्रायोजन कार्यक्रमों को अपनाएंगे तथा शरणार्थियों के लिए मानवीय गलियारे खोलेंगे। इस बात पर बल देते हुए कि शरणार्थियों का स्वागत करने वाले देश लाभ भी साझा करते हैं, महाधर्माध्यक्ष यूरकोविट्स ने कहा कि शरणार्थियों के सामाजिक और व्यावसायिक समावेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शरणार्थियों की क्षमताओं को उचित रूप से स्वीकार किया जाए तथा उन्हें महत्व दिया जाए, ताकि उनके लिए रोजगार, भाषा निर्देश और सक्रिय नागरिकता की संभावनाएं उत्पन्न हो सकें। इसी बीच लीबिया में शरण ले रहे शरणार्थियों की खतरनाक स्थिति के प्रति ध्यान आकर्षित कराते हुए उन्होंने स्मरण दिलाया कि संत पापा फ्रांसिस ने लीबिया के हिरासत शिविरों को खाली किए जाने तथा मानवीय गलियारों को खोले जाने हेतु विचारशील प्रयासों की अपील की है। विशेष रूप से उन्होंने कहा कि लीबिया में कष्ट भोग रहे बच्चों, महिलाओं, रोगियों को उन शिविरों से बाहर निकाला जाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जापान में निगाता के लिए नियुक्त धर्माध्यक्ष तथा दिव्य शब्द धर्म समाजी पुरोहित फादर पॉल दाइसुके ने वेटिकन रेडियो से बातचीत में कहा कि COVID-19 महामारी के बाद उत्पन्न आर्थिक संकट से उबरने में कलीसिया को मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधारों को ऐसे नैतिक निवेश पर आधारित होना चाहिए जिनमें निर्धनों और पर्यावरण का शोषण न हो तथा उनकी उपेक्षा न की जाए। फादर पॉल दाइसुके ने कहा, ऐसी स्थिति में जब दुनिया के तमाम देश और समुदाय निवेश, नवाचार, विकास और स्थिरता के माध्यम से अपनी बिखरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वह नेताओं और नीति निर्माताओं का साथ दे और यह सुनिश्चित करे कि विकास उचित, टिकाऊ और न्यायसंगत हो। उन्होंने कहा, कैथोलिक अर्थशास्त्री उन निवेशों के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं जो फलदायी तो प्रतीत हो सकते हैं लेकिन अनैतिक प्रथाओं और व्यक्तियों तथा पर्यावरण के शोषण पर आधारित हैं। फादर दाइसुके एक अर्थशास्त्री हैं जो शांति, न्याय और सृष्टि की अखंडता के साथ साथ अप्रवासियों की वकालत के लिए जाना जाते हैं। सन 2018 से वे जर्मनी के स्टाइलर बैंक की नैतिकता संबंधी समिति के सदस्य हैं। यह बैंक दिव्य शब्द धर्म समाज का नैतिक पर्यावरणीय बैंक है जो मानवतावादी कार्यों के लिए नैतिक दृष्टि से अनुदान एकत्र करता है। नैतिकता में निवेश के अर्थ को समझाते हुए फादर दाइसुके ने कहा, इसका अर्थ है निवेश के माध्यम से अन्याय, मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश को रोकना। उन्होंने कहा, ऐसा करने के लिए हम अनैतिक व्यापार जैसे पर्यावरण के ह्रास, गर्भपात, भ्रूण अनुसंधान, सैन्य और शस्त्र उद्योग या कुछ कंपनियों के काम करने के गलत तरीके जैसे श्रम अधिकारों का उल्लंघन आदि में निवेश करने से बचते हैं। फादर दाइसुके ने कहा, कोरोना वायरस महामारी के कारण हुए पतन के बाद संपूर्ण विश्व आर्थिक सुधार के बारे में चिंतित है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि निपट निर्धनता से बचने के लिए स्थिति को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। दूसरों का कहना है कि यह अर्थशास्त्र के एक नए रूप को शुरू करने का सुअवसर है। फादर दाइसुके ने कहा कि इस स्थिति में कलीसिया मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व में चटगांव पहाड़ियों में हुए एक हमले में कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मारे जाने से स्थानीय लोगों में फैली दहशत और असुरक्षा के बाद बांग्लादेश की कलीसिया ने शांति बनाए रखने की अपील की है। बांग्लादेश के चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र में एक जातीय राजनीतिक दल के कई सदस्यों की हत्या के बाद कलीसिया ने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और घातक हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया है। 7 जुलाई को बंदरबन जिले में पर्वतिया छत्र ग्राम जन संघर्ष समिति के एमएन लार्मा प्रतिद्वंदी गुट के एक नेता के घर में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलीबारी की, जिसमें 6 व्यक्तियों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। बंदरबन के पुलिस अधीक्षक जरीन अख्तर ने कहा कि वे हत्यारों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा से इलाके के लोगों में दहशत फैल गई है और अधिकारियों ने गश्त पर पुलिस और सैनिकों को तैनात किया है। भारत और म्यांमार की सीमा से लगी चटगांव की पहाड़ियां बांग्लादेश का एकमात्र पर्वतीय क्षेत्र है जहां लगभग 25 विभिन्न जनजातियां निवास करती हैं। इनमें अधिकांश बौद्ध और ख्रिस्तीय धर्मों के अनुयायी हैं। कैथोलिक धर्मानुयायियों की संख्या यहां लगभग 32,000 है, जिनमें 2/3 आदिवासी मूल के हैं। चटगांव महाधर्म प्रांत की न्याय और शांति संबंधी समिति ने इस सप्ताह के प्राणघाती हमले की कड़ी निंदा की है तथा हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया है। समिति के समन्वयकर्ता फादर अल्बर्ट सोरेन ने उका न्यूज से कहा कि हर प्रकार की हिंसा का अंत होना चाहिए तथा शांति की स्थापना की जानी चाहिए। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।